नमस्कार भारत, 27 जून दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद ब्रिटेन की राजनीति में उथल पुथल जारी।
We realize there is a ongoing debate inside the United Kingdom on how to deal.
भारत को आज नहीं तो कल परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का सदस्य बनने की उम्मीद।
कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी क्लब की सदस्यता के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, और मेरे ख्याल से NSG भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ और समय लगेगा।
उत्तर प्रदेश में आज होगा अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का विस्तार, और लंदन में आज ही होगा विंबलडन का आगाज। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। यूरोपीय संघ से अलग होने के ब्रिटेन के फैसले के बाद घबराए एशियाई बाजार। आज सुबह खुलने के बाद कुछ संभले हैं, हालांकि पाउंड की कीमत में आज भी गिरावट देखी गई है। शुक्रवार को ब्रिटेन में जनमत संग्रह के नतीजे आने के बाद दुनिया भर में बाजारों में भारी उथल पुथल देखी गई थी। ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वित्त मंत्री जॉर्ज ऑस्बोर्न यूरोपीय बाजारों में भरोसा जगाने के लिए कुछ कदमों की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ब्रेक्सिट के लिए प्रचार करने वाले बोरिस जॉनसन के नाम पर चर्चा जोरों पर है। वहीं विपक्षी लेबर पार्टी के 11 सांसदों के शैडो कैबिनेट से इस्तीफा देने से पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कोलंबिया की सेना ने कहा है कि 16 सैनिकों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। राहत टीमें तोलिमा प्रांत में हेलीकॉप्टर की तलाश कर रही हैं। प्रशांत महासागर के नजदीक एक मिशन से ये हेलीकॉप्टर लौट रहा था जब ये लापता हो गया है। स्पेन के कार्यकारी प्रधानमंत्री मारियानो रजॉय ने कहा है कि उनकी रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है और सत्ता में लौटने का अधिकार भी उसे मिल रहा है। पॉपुलर पार्टी के जो वोट पिछले दिसंबर में चुनाव में दो नई पार्टियों पोडेमोस और क्यू डेडेनोस ने छीन लिए थे, वो पॉपुलर पार्टी को वापस मिल गए हैं। फिर भी सरकार बनाने के लिए एक या दो सहयोगी दलों की उसे जरूरत पड़ेगी। क्यू डेडेनोस पार्टी के नेता ने कहा है कि पॉपुलर पार्टी को समर्थन देने के लिए वो बातचीत कर सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी को इन चुनावों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मारियानो रजॉय ने कहा कि उनकी पार्टी स्पेन के हितों में काम करना चाहती है। हमने चुनाव जीत लिया है और हम सरकार बनाने का अधिकार मांगते हैं। हम 100% स्पेनी लोगों के लिए काम करेंगे, उसमें भी वो भी होंगे जिन्होंने हमें वोट दिया, और वो भी शामिल होंगे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। ये थे मारियानो रजॉय के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें मीडिया से जुड़े 5 कार्यकर्ताओं की हत्या करते हुए दिखाया गया है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मारे गए लोग सीरिया में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले पूर्वी प्रांत दियर अल जूर में के रहने वाले हैं। संगठन का ये भी कहना है कि इनमें से एक व्यक्ति सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स को सूचनाएं पहुंचाता था। इन 5 पर आरोप था कि वे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ काम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों की हत्या 6 महीने पहले की गई थी, लेकिन हत्या का वीडियो अब जारी किया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में नए पुराने सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आज आपके साथ मैं हूं संदीप सोनी। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें से कोई एक विषय भी अगर आपने पढ़ा होगा तो चेन रिएक्शन के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, और जिन्हें नहीं मालूम वो पूछेंगे कि भाई चेन रिएक्शन होता क्या है। तो इसमें होता यह है कि एक प्रक्रिया अगली प्रक्रिया को जन्म देती है, एक घटना अगली घटना की पृष्ठभूमि तैयार करती है, और फिर यह सिलसिला चलता जाता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों ब्रिटेन के मामले में हो रहा है, जहां लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया, फिर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 3 महीने के भीतर इस्तीफा देने की घोषणा की। अब चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर डेविड कैमरन की जगह कौन बैठेगा, मुख्य विपक्षी दल किसके हवाले होगा, क्या भूमिका होगी, यूरोप में ब्रिटेन की हैसियत क्या होगी, वगैरह वगैरह। इन तमाम सवालों और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर ब्रिटेन में आजकल क्या चर्चा है, बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले के बाद ब्रिटेन में उथल पुथल जारी है। ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट पड़ने के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा गर्म है। तो विपक्षी लेबर पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है। पहले बात अगले प्रधानमंत्री की। ब्रेक्सिट के लिए प्रचार की कमान थामने वाले बोरिस जॉनसन और गृह सचिव थेरेसा मे ने इस दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन के आलोचक उन पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के राजनीतिक सलाहकार रहे एलिस्टर कैंपबेल ने कहा है कि यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए बोरिस जॉनसन का प्रचार धोखाधड़ी से भरा हुआ था।
Do you know what they wanted? This is how duplicitous they are. They wanted 51-49 Cameron to win.
एलिस्टर कैंपबेल कह रहे थे, ये लोग धोखेबाज हैं, वो चाहते थे कि 51-49 से कैमरन जीत जाएं। इस तरह ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर भी नहीं होगा, लेकिन कैमरन को नुकसान होगा और उन्हें बाहर किया जा सकेगा। इस तरह का नेतृत्व ठीक नहीं है। मैं भी डेविड कैमरन को पसंद नहीं करता हूँ। जनमत संग्रह कराना एक रणनीतिक भूल थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री होने पर मुझे शर्म नहीं आती। वहीं बोरिस जॉनसन को अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो मुझे ब्रितानी होने पर शर्म महसूस होगी। एलिस्टर कैंपबेल के शब्द। वहीं बोरिस जॉनसन ने डेली टेलीग्राफ में एक लेख में कहा है कि जनमत संग्रह के नतीजों के बुरे असर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रचार के दौरान ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों की संख्या का आंकड़ा बढ़ाकर बताया गया था। दूसरी तरफ विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के खिलाफ पार्टी के भीतर जबरदस्त मोर्चेबंदी करते हुए 11 सांसदों ने शैडो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के एक धड़े का आरोप है कि जेरेमी कॉर्बिन ने यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए प्रचार में ढिलाई बरती। हालांकि कॉर्बिन ने इस्तीफा देने से इनकार किया और कहा कि 24 घंटे में शैडो कैबिनेट को नया रूप देंगे। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि ब्रिटेन में राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। ब्रिटेन के अंदर मची उधेड़बुन पर यूरोप की नजरें बराबर बनी हुई हैं। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल के चीफ ऑफ स्टाफ पीटर अल्टमेयर ने कहा, ब्रिटेन को जनमत संग्रह और ब्रेक्जिट के परिणाम पर सोचने के लिए समय देना होगा, ताकि ब्रितानी संसद, ब्रितानी संस्थाएं, सरकार और लोग मिलकर फैसला कर सकें कि आगे क्या करना है। इस बीच अगर यूरोप की तरफ नजर दौड़ाएं तो अब यूरोपीय संघ को बिखराव का खतरा सताने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओला ने कहा है कि ब्रिटेन के जनमत संग्रह ने यूरोप में मौजूद विभाजन की लकीरों को उभार दिया है। फ्रांस्वा ओला ने कहा कि यूरोप का मतलब है शांति और राष्ट्रवाद का अर्थ है जंग। विदेशी लोगों के प्रति नफरत और उग्रवाद का फैलाव जारी है। एक स्वार्थपूर्ण फैसला ऐसे ही दूसरे कदम की प्रेरणा बनता है, फ्रांस्वा ओला के शब्द। इस बीच ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अलगाव की खबरों से डावाडोल हुए वित्तीय बाजारों की नजरें सोमवार को खुलने वाले यूरोपीय बाजारों पर टिकी हैं। ब्रितानी वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबोर्न ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ब्रेक्सिट के तूफान से सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदमों की घोषणा जल्द ही कर सकते हैं।
ये देखना होगा एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजार आज किस दिशा में जाते हैं। रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह यानी एनएसजी में सदस्यता का विरोध करने के लिए भारत ने चीन को फटकार लगाई है और दो टूक शब्दों में कहा है कि चीन को भारत के हितों का ध्यान रखना होगा। भारत ने ये उम्मीद भी जताई है कि आज नहीं तो कल उसे एनएसजी में जगह मिल जाएगी। हालांकि भारत में इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। विपक्षी दल मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सुनिए वात्सल राय की रिपोर्ट।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी की दावेदारी पर सोल में माकूल नतीजे नहीं मिलने के बाद भी भारत निराश नहीं है। उनका कहना है कि पहले भी ऐसे समूहों की सदस्यता को लेकर भारत को लंबा इंतजार करना पड़ा है। विकास स्वरूप ने कहा,
मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी क्लब की सदस्यता के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें वक्त लगता है। अब MTCR को ही ले लीजिए, MTCR से हमारा एंगेजमेंट 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। पिछले वर्ष हमने अर्जी डाली और सोमवार को हम MTCR के सदस्य बनने जा रहे हैं। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनमें समय लगता है और मेरे ख्याल से NSG भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ और समय लगेगा।
48 देशों वाले समूह में भारत की दावेदारी का चीन विरोध कर रहा है। चीन का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को NSG की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। विकास स्वरूप ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की लगातार चीन से बात हो रही है। उधर चीन के विरोध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर लिखा, झूलों में झूलने और झुलाने से विदेश नीति मजबूत नहीं होती। लालू प्रसाद यादव ने इस तंज के जरिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान हुई खातिरदारी को याद दिलाने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं।
कूटनीति इवेंट्स करके, टेलीविजन कैमरास के सामने दावे करके, बयान देके और जिन राष्ट्रों के साथ काम करना है उनके बीच में भी आप भेद करके कि कौन आपके पक्ष में है कौन विरोध में है, इसको कूटनीति नहीं कहा जा।
विपक्षी दल ही नहीं, पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा ने भी केंद्र सरकार की NSG सदस्यता को हासिल करने की कोशिश को लेकर सवाल उठाए हैं। सिन्हा का कहना है कि भारत को NSG की सदस्यता हासिल करने से कोई लाभ नहीं होगा।
मैं जोर देके इस बात को कहना चाहता हूं कि NSG में आज के दिन अगर हम जाते हैं तो हम लूजर होंगे, हमको घाटा होगा, हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मैं अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आज भी भारत सरकार में वही पदाधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने उस समय भारत सरकार को इस मामले में दिग्भ्रमित किया, मिसगाइड किया।
उधर तमाम आलोचनाओं के बाद भी सरकार का दावा है कि उसकी कोशिशें सही रास्ते पर हैं और नतीजा भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आएगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल राय। और इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर आपके पास काला धन है, अघोषित संपत्ति है तो 30 सितंबर तक बता दें, वरना उसके बाद जो होगा उससे आपको तकलीफ होगी। सरकार इसे देश के भीतर जमा काला धन बाहर निकलवाने का प्रयास बता रही है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का नया नाटक, नई नौटंकी बताया है। एक रिपोर्ट के साथ अशोक कुमार।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी आय छुपाने वालों को 30 सितंबर तक अघोषित आय की घोषणा करने को कहा है। मोदी ने कल रेडियो पर 21वीं बार मन की बात की तो इसे लेकर सरकार की ओर से शुरू की गई योजना की जानकारी भी दी। मोदी ने कहा कि करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक पीढ़ी को अब भी लगता है कि सरकार से दूर रहना ही अच्छा है। मोदी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर नजर आने वाली गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा,
125 करोड़ के देश में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों के पास अघोषित आय है उनके पास 30 सितंबर तक जुर्माना देकर बोझ से मुक्त होने का अवसर है।
इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए, 30 सितंबर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ हो जो सरकारी नियमों से जुड़ना नहीं चाहता है तो उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी। 30 सितंबर के बाद संभवित तकलीफों से अपने आप को बचा लें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों से आय के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाएगी।
स्वेच्छा से जो अपने अघोषित आय के संबंध में सरकार को अपनी जानकारी दे देंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी। इतना धन कहां से आया, कैसे आया, एक बार भी पूछा नहीं जाएगा।
उधर कांग्रेस को सरकार की ये कोशिश महज राजनीतिक नाटक नजर आती है। कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा,
काला धन के मामले में शोर बहुत किया गया, 2 साल हो गए हैं, एक फूटी कौड़ी विदेश से वापस लाने में ये सरकार कामयाब हुई क्या? रहा सवाल ये एमनेस्टी देने का, इन विंडोज के खोलने से कई बार खोली जा चुकी है ना पिछले कई दशकों में, थोड़ा बहुत ना के बराबर पैसा आता है। बड़े बड़े पूंजीपतियों से जिनसे इस सरकार ने अरबों रुपया चुनाव में लिया है, उनसे काला धन वसूल करने की बात, क्या ये सरकार हिम्मत दिखा पाएगी? ये राजनीतिक नाटकबाजी के अलावा और कुछ नहीं है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए कानून बनाया था और बीते साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक काले धन की घोषणा का मौका दिया था। हालांकि तब उम्मीद के मुताबिक नतीजे हासिल नहीं हुए थे। सरकार की मौजूदा योजना से कितना काला धन बाहर आता है, ये आंकड़ा 30 सितंबर के बाद ही जाहिर होगा।
जैसा कि आपने अशोक कुमार की रिपोर्ट में सुना, प्रधानमंत्री मोदी ने धन दौलत संपत्ति छिपाने वाले लोगों को 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। क्या प्रधानमंत्री की इस चेतावनी का कुछ असर होगा? क्या सरकार देश में मौजूद अघोषित धन दौलत को सामने लाने में कामयाब होगी, या ये सब एक रस्म अदायगी जैसा है? यही जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने आर्थिक मामलों के जानकार एम के वेणु से बात की।
इससे पहले जो सरकार ने एक बड़ा लेजिस्लेशन और लॉ ये लाए थे जो विदेशी काले धन को लाने के लिए, उसके लिए भी इन्होंने एक 6-8 महीने का विंडो रखा था पिछले साल। उसका अनुभव देखें तो उसमें मेरे ख्याल 4,500 या 5,000 करोड़ आया होगा, जबकि बीजेपी दावा करती थी कि बाहर कई 100, 200, 500 बिलियन डॉलर काला धन बाहर पड़ा हुआ है विदेशों में। तो वो एक्सपीरियंस देखें तो मुझे आशा नहीं है कि इसमें कोई सक्सेस होगा इनके लिए। उसका मूल कारण उसका ये है, अगर आप ब्लैक मनी को अटैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इलेक्शन फंडिंग को अटैक कीजिए जिसमें कैश आता है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी आज स्थिति में है जो 80% पैसा जो उनको मिलता है वो चेक से नहीं लेते और वो दिखाते हैं कि छोटे छोटे कैश कॉन्ट्रीब्यूशन आए हैं 20,000 से नीचे, जिसपे उनको किसी का नाम और कुछ देना नहीं पड़ता। क्या वो आज ये क्षमता रखते हैं और ये करेज है उनमें आज की बोलने की, भाई वो उसको भी डिक्लेयर करें कैश नहीं लेंगे पॉलिटिकल पार्टी? ये जो मूल जो मुद्दा है, जब तक ये नहीं सुलझाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी।
जिस तरह से काला धन एक चुनावी मुद्दा था और बड़ा मुद्दा इसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, तो उसके बाद ये सब कोशिशें क्या आपको रस्मी लग रही है? सिर्फ
दिख तो यही रहा है कि जो असली जो रूट कॉज जो है उस पे तो अभी तक एड्रेस हो ही नहीं रहा, और आए दिन आप देखिए कितने इंडस्ट्रियलिस्ट काला धन जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ केसेस हैं बाहर चले गए। विजय माल्या सीबीआई को पता था जा रहे हैं बाहर, एयरपोर्ट में जाने दिया और अभी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। ललित मोदी उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और कई बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबको पता है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाई है कि किस तरह उन्होंने ओवर इन्वॉइसिंग करी इम्पोर्ट की और उस जरिए से बाहर काला धन ले गए। अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके खिलाफ। तो अगर ये सब देखें तो ऐसा लगता है कि बातें ज्यादा हो रही है, काम कुछ कम हो रहा है। हाँ, थोड़े बहुत इधर उधर रेड्स हो रही हैं, थोड़े बहुत कैश मार्केट को ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा अटैक किया, रियल एस्टेट में कैश मार्केट थोड़ा आजकल कम हुआ है, काले धन का जो इस्तेमाल कम हुआ है। जो बड़े उद्योगों का जो काम करने का तरीका है, मुझे लगता है कि उसमें अभी भी ज्यादा बदलाव नहीं आया।
काला धन जो एक बड़ी समस्या बताई जाती है, इस समस्या के समाधान के लिए दरअसल होना क्या चाहिए, क्या कुछ सरकार को करना चाहिए?
सरकार को सबसे पहले तो एक बड़ा लेजिस्लेशन लाना चाहिए जो इलेक्शन फंडिंग को बिल्कुल एक वाइट मनी के थ्रू इलेक्शन फंडिंग का एक प्रावधान हो, चाहे वो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन ही क्यों ना हो। और उस लेजिस्लेशन में ये भी होना चाहिए कि जो कैश में कंट्रीब्यूशन देते हैं काले धन का, बड़े उद्योग देते हैं ज्यादातर, सीवियर पेनल्टीज होनी चाहिए उस पे। मेरा मानना है स्टेट फंडिंग इलेक्शन का और पॉलिटिकल पार्टीज का प्रावधान नहीं होगा लेजिस्लेशन में, तब तक इसका समाधान नहीं होगा इस इशू का।
ये थे आर्थिक मामलों के जानकार एम के वेणु। नमस्कार, भारत सुन रहे हैं आप। 27 जून दिन सोमवार, मैं हूँ संदीप सोनी। वक्त हुआ है सुबह के 6:48। चाय की प्याली सुबह का वक्त है और अखबार दिन की इससे बढ़िया शुरुआत कुछ हो सकती है भला। आप चाय का आनंद लें और हम आपको बताते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या छपा है। हरिता कांडपाल अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खबरें छाई हैं उनमें भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 8 जवानों की जो कल मौत हो गई थी उसके बाद क्या क्या हुआ उसकी खबरें जुड़ी हैं। उसके अलावा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के लिए अभी उम्मीद बाकी और ब्रेक्सिट के प्रस्ताव को अटकाने की स्कॉटलैंड की धमकी, इस तरह की कई खबरें छाई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जिस खबर का जिक्र आज कर रही हूँ अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू में छपी है। इसके पहले पन्ने पर प्रमुखता से एक सर्वे रिपोर्ट के बारे में बताया गया जिसमें 2015-2016 में 80% भारतीय कंपनियां जिन्हें सर्वे में शामिल किया गया वो भ्रष्टाचार से जुड़े फर्जीवाड़े का शिकार हुई हैं और 2013-2014 में ये आंकड़ा 69% बताया गया था, अब ये बढ़ चुका है 80% हो चुका है। और एक कंसल्टेंसी कंपनी क्रॉल की ग्लोबल फ्रॉड रिपोर्ट 2015-2016 में ये आंकड़ा सामने आया है और ये सर्वे 6 महाद्वीपों में किया गया, कई देशों में किया गया इसका मतलब, और भारत इसमें 3rd स्थान पर है और पहले स्थान पर सब सहारन अफ्रीका जहाँ 84% कंपनियाँ जो हैं इस तरह के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का शिकार होती हैं और भारत में ये आंकड़ा 80% है। तो ये एक खबर थी जिस पर मेरा ध्यान सबसे पहले गया। इसके अलावा दूसरी खबर पर हम जब जाते हैं तो लंदन और ब्रेक्सिट के बारे में बात करूँगी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है कि 30 लाख लोगों ने दस्तखत किए हैं एक ज्ञापन पर जिसमें लंदन को यूरोपीय संघ से जोड़ दिया जाए और ब्रिटेन से अलग कर दिया जाए, इस पक्ष में लोगों ने दस्तखत किए हैं और ये संख्या हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा के लिए ज़रूरी 1 लाख दस्तखतों से कहीं ज़्यादा है। तो ये इस मांग ने जोर पकड़ा है कि लंदन को अलग कर दिया जाए क्योंकि लंदन में ज़्यादातर लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने के लिए वोट किया था, इस तरह का बहुमत वहाँ पर था। और इसके अलावा हम बात करें तो भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 8 जवानों की मौत पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली गोली हम नहीं दागेंगे लेकिन अगर पाकिस्तान दागेगा तो हम गोलियों का कोई हिसाब नहीं रखेंगे। इसके अलावा भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चरमपंथी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर का मैं जल्दी से जिक्र कर देती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर आजकल वित्त मंत्री अरुण जेटली है और भाजपा का एक धड़ा मानता है कि उन पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें रोका जाना चाहिए। और अरुण जेटली चीन से जब लौट रहे हैं बीजिंग से तो अब वो इस पर काम तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है।
बहुत शुक्रिया। और एक खबर उत्तर प्रदेश में जहाँ अखिलेश यादव सरकार के मंत्रिपरिषद में आज 4 नए मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, इनमें से एक बलराम सिंह यादव का नाम जाहिर हो चुका है, बाकी नाम जाहिर होना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि इस कवायद के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टियों में चल रही उथल पुथल के बीच आज अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार होने जा रहा है। इस समय मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं लेकिन हाल ही में मंत्रिमंडल से निकाले गए बलराम सिंह यादव की वापसी तय है, इसलिए विस्तार में 3 नए मंत्रियों को ही मौका मिल सकता है। नियमों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक 60 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतने कम समय में इस विस्तार की क्या जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी जवाब देते हैं।
चुनाव तो अभी वक्त है, इसमें चुनाव में जो खाली सीटों का भी भर सकते हैं, फिर ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार भी है तो बेटी से तो खाली स्थान उनको भरा जा रहा है, अच्छी बात है। तो
उधर जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करना चाहती है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार राधे कृष्ण कहते हैं,
जहाँ तक सवाल है कि जरूरत क्या है तो बस वही कुल मिलाकर के लिए कि चुनाव 6 महीने हैं, सामाजिक समीकरण और जातिगत समीकरण साथ करके पार्टी विजय पताका फहराना चाहती है। अभी जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें मुस्लिमों की तरफ से एक मांग उठी थी कि किसी मुस्लिम को समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेजे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस समय उसको बहुत ज्यादा उनकी मांग को माना नहीं था क्योंकि उस समय उनके पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिमों की उस बात को ध्यान में रखकर के हो सकता है किसी मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए।
आज बनने वाले मंत्रियों में सिर्फ बलराम यादव का ही नाम तय है, जिसकी घोषणा दो दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल कर चुके हैं और जिन्हें पिछले हफ्ते ही मंत्री पद से हटाया गया था। बाकी तीन के नामों पर सिर्फ कयास ही लग रहे हैं। हालांकि इनमें रविदास मेहरोत्रा, शारदा शुक्ल और जियाउद्दीन रिजवी की दावेदारी काफी पुख्ता समझी जा रही है। इन तीनों को राज्य मंत्री बनाए जाने की संभावना है। नए मंत्री बनाने के अलावा कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होने की भी संभावना है। अखिलेश यादव ने पिछली बार 31 अक्टूबर 2015 को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उस समय 5 कैबिनेट मंत्री और 16 राज्य मंत्री बनाए गए थे। मंत्रिपरिषद विस्तार के अलावा आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और बाराबंकी में वो अवध क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 14 जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब बात खेल जगत की। क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? अगर आपका जवाब है विंबलडन तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की आज से शुरुआत हो रही है। कौन कौन है इस बार खिताब के दावेदार और भारत की स्थिति क्या है, बता रहे हैं लंदन से BBC संवाददाता अपूर्व कृष्ण।
लंदन के खूबसूरत विंबलडन इलाके में अगले दो हफ्ते तक दुनिया के चोटी के टेनिस खिलाड़ियों के बीच होड़ लगेगी। ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में सबसे पुरानी और घास पर खेली जाने वाली अकेली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने की। इस बार पुरुषों में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच। पिछले साल अपना तीसरा विंबलडन खिताब हासिल करने के बाद हुए तीनों ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में जोकोविच ने अपना विजय अभियान जारी रखा है। प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर हैं ब्रिटेन के एंडी मरे। मरे ने 2013 में जोकोविच को मात देकर अपना पहला विंबलडन जीता था। प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर हैं 7 बार के विंबलडन विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। अन्य खिलाड़ियों में चौथे सीड स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका और जापान के निशिकोरी भी अच्छी चुनौती दे सकते हैं। वहीं महिलाओं में इस बार फिर सारी निगाहें होंगी पिछली बार की विंबलडन विजेता अमेरिका की दुनिया की पहले नंबर के खिलाड़ी सरीना विलियम्स पर। 34 वर्षीय सरीना अगर इस बार जीतती हैं तो वो न केवल उनका 7वां विंबलडन होगा बल्कि इस जीत से वो स्टेफी ग्राफ के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के कीर्तिमान की भी बराबरी कर लेंगी। सरीना इस कीर्तिमान के काफी करीब आकर भी इसे नहीं छू पा रही हैं। वे इस साल दोनों ग्रैंड स्लैम मुकाबलों के फाइनल तक पहुंची मगर ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जहां जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने सरीना को हरा दिया, वहीं फ्रेंच ओपन में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने उन्हें मात दी। मुगुरुजा पिछले साल सरीना के साथ विंबलडन फाइनल में भी टकराई थी। अन्य खिलाड़ियों में तीसरी सीट की पोलैंड की एग्नियस्का राडवांस्का और रोमानिया की सिमोना हालेप के अलावा 2 बार की विंबलडन विजेता चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा भी मैदान में होंगी। विंबलडन में इस बार एक बार फिर भारतीय खिलाड़ी डबल्स मुकाबलों में ही नजर आएंगे। सबसे ज्यादा उम्मीद रहेगी लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा से। दोनों खिलाड़ियों ने स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ पिछले 1.5 साल में कई ग्रैंड स्लैम मुकाबले जीते हैं। सानिया ने हिंगिस के साथ पिछली बार विंबलडन जीतकर भारतीय टेनिस के लिए इतिहास बनाया था। दुनिया की पहले नंबर की महिला डबल्स जोड़ी ने उस शानदार जीत के बाद US ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भी जीत का सिलसिला जारी रखा मगर विंबलडन से पहले फ्रेंच ओपन में वे तीसरे राउंड में हार गईं। फ्रेंच ओपन में कामयाबी मिली लिएंडर पेस को। उन्होंने वहां मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता। लिएंडर इस बार मेंस डबल्स में भी उतरेंगे जहां उनके जोड़ीदार होंगे पोलैंड के मार्सिन मात्सुकोवस्की और सानिया भी मिक्स्ड डबल्स खेलेंगी जहां उनके जोड़ीदार होंगे क्रोएशिया के इवान डॉडिग। विंबलडन में बोपन्ना रोमानिया के अपने जोड़ीदार फ्लोरिन मिर्जा के साथ एक बार फिर कोशिश करेंगे लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा की तरह ग्रैंड स्लैम जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कहलाने की। अपूर्व कृष्ण, BBC लंदन।
इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। यूरोपीय संघ से अलग होने के ब्रिटेन के फैसले के बाद घबराए एशिया बाजार। आज सुबह खुलने के बाद कुछ संभले हैं, हालांकि पाउंड की कीमत में आज भी गिरावट देखी गई है। कोलंबिया की सेना ने कहा है कि 16 सैनिकों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। स्पेन के कार्यकारी प्रधानमंत्री मारियानो रजॉय ने कहा है कि उनकी रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में लौटने का अधिकार हासिल कर चुकी है। सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें मीडिया से जुड़े 5 कार्यकर्ताओं की हत्या करते दिखाया गया है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च को समलैंगिकों से उनके साथ किए गए बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक एक घंटे के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।